قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان للنبي أن يغل نبی کو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ دل میں کینہ رکھے یا پھر مال غنیمت میں سے کچھ لے لے کیونکہ وَمَنْ يَغْلُ الْيَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اس خیانت کے ساتھ قیامت کے دن لایا جائے گا ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ پھر ہر نفس کو وہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. سورۃ آل عمران کی آیت 161 میں آپ نے تین دفعہ ایک ہی روٹ سے لفظ دیکھا یغلہ یغلل اور غلہ. اسی طرح سورۃ مائدہ آیت 64 میں یہ لفظ کیسے آیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھوں بندھے ہوئے ہیں حالانکہ غلت ایدیہم باندھے گئے ہاتھ ان کے یعنی بند گئے ہاتھ ان کے یعنی یہ کلمہ بود ہے ڈانٹ ہے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو وَلُوِنُوا بِمَا قَالُوا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور کیے گئے اس کہنے کی وجہ سے. پھر اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 43 اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کی صفت بیان کرتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ اور ہم کھینچ کے نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ بھی کینہ ہوگا جو کھوٹ کھپٹ ہوگی جو رنجش ہوگی جو دل میں دوسرے کے بارے میں کوئی برے جذبات ہوں گے. پھر کیا کریں گے تجری من تحتہم الانہار ان جنتوں میں اللہ ان کو داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہیں اور وہاں جا کر کیا کہیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کہنے کا موقع دے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی جبکہ وما کن لنہتدیا ہم کہاں تھے اس کی راہ پکڑنے والے ہم کہاں تھے ہدایت پانے والے لولا ان ہدانا اللہ اگر نہ ہم کو ہدایت دیتا اللہ. بات کیا تھی لقد جاءت رسل ربنا بالحق بے شک آ گئے ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول حق کے ساتھ ونودوا ان تلکم الجنہ اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ ہے وہ جنت اورثتموها بما کنتم تعملون تم وارث بنائے گئے ہو اس کے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. یہاں آپ کو اندازہ ہوا کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے بارے میں جو دلوں میں کوئی نیگیٹو جذبات ہیں اس کو نکال دیں گے ورنہ تو جنت میں جا کر بھی ایک انسان خوش نہ ہو. پھر اسی طرح یہی لفظ آیت 157 سورۃ الاعراف میں استعمال ہوئے طویل آیت ہے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یعنی اللہ نے اپنے پیارے نبی کو کیا خوبیاں دیں اور انہوں نے انسانیت کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضل کیا ان میں سے ایک چیز یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ہم پر احسانات امت مسلمہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسان تھے اس میں کیا تھا وَيَدَوْ عَنْهُمِ سْرَحُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ ہٹاتا ہے ان سے بوجھ ان کے اور وہ توک یہاں اغلال توک کی سمن میں اور آپ سارے لفظوں کو بعد میں دیکھیں گے کہ ایک ہی چیز کتنے ڈفرینٹ اینگل سے ہمیں سمجھائے گی قرآن پاک میں کہ جو توک ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے رسم و رواج کے مختلف کاموں کے یہ نبی نے آ کر اتار دیے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس پہ وہ اس کو تقویت دیتے ہیں اس کی مدد کی اور کہا کہ مدد کرو ان کی اس راستے میں ان کے مددگار بن جاؤ اور پیروی کرو اس روشنی کی جو اس کے ساتھ اتاری گئی تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سورۃ رعد آیت 5 میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے اولئک الاغلال فی اعناقہم یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توک ہے اور یہ آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کن لوگوں کی بات ہے جو کہتے تھے کہ ہم اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ کیسے جئیں گے اٹس ویری امپاسبل یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مرنے کے بعد جئیں تو اللہ نے کہا یہ ان کا کہنا ان کے گلے کا توک ہے. फिर इसी तरह इसके बाद सूरह हिजर आयत 47 में वही बात है जो सूरत अल अराफ में जन्नतियों की सिफत थी कि जन्नत में ले जाने से पहले अल्लाह ताला दिलों के अंदर से खोट कपट निकाल देगा और क्या होगा, व नज़ान माफ़ी सुदूरहिम, और हम खींच के ले जाएंगे वो कुछ जो उनके सीनों में था, मिन गिल्लिन, कोई कीना, कोई बुगस, कोई हसद, कोई रकाबत, और हो कैसे जाएंगे वो, इख्वानन, भाई भाई बन जाएंगे, अला सुरूरे मुतकाबिलीन, और सोने के तख्तों पर एक दूसरे के सामने आमने बैठे होंगे। जब दिल से गुस्सा, गिला, रंज, शिकवे दूर हो गए तो फिर आमने सामने बैठने में क्या बुरा है। तो लोग तो उसी का सामना नहीं करना चाहते ना जिसके लिए दिल में कुछ होता है। इसी तरह से ये लफ्ज़ जिसमें आपने समझ ही लिया होगा, गिल का लफ्ज़ कॉमन है, आज हम इस पर बात करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी रूह को क्या क्या बीमारियां लगी हुई हैं। अभी इससे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह कल रात तक हमारा फ्रांस का ट्रिप था जिसमें हमने सबसे पहले तकब्बुर पे बात की थी एक सेशन में, फिर दूसरे में हमने गुस्से पे बात की थी, एंगर मैनेजमेंट पे, फिर तीसरे सलेसन में हमने बात की थी, टॉपिक तीसरा हमारा था हसद का, कैसे लोग हसद की आग में जलकर खुद को जहन्नुम की आग का ईंधन बनाते हैं। फिर चौथा टॉपिक हमने इसमें रियाकारी का किया था, बदतर दिखावा, जिससे आज इंसानियत जो है वो लाहक है। तो अब ये छठा टॉपिक हम आज आपके साथ करेंगे इधर, कीना। और आप देखेंगे कि सिर्फ एक बुराई को ले लें तो ये हमारा सुकून और चैन दूर करने के लिए काफ़ी है। और कुरान पाक में ये लफ्ज़ 16 दफ़ा आया है 13 आयतों में, यानी 3 आयतों में 2 दफ़ा और बाकी में एक एक। अगर आपने ये जो मैंने चंद आयत पढ़ी, अभी बाकी आयत भी इंशाल्लाह बीच में आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने देखा कि गिल क्या है। मुझे तो एक बात ही समझ आई है, अभी ना मैंने कोई इसकी तारीफ़ बताई है ना पढ़ी है, लेकिन कुरान की आयतों से मुझे पता चलता है कि गिल गले का बोझ है, तौक। किसी इंसान के गले में रस्सी डालकर उसको दबाएं तो उसकी आंखें जो बाहर आती हैं और जो उसकी दिल की चेहरे की हालत है उसको इमेजिनेशन में करें, तो मेरे जहन में गिल और कीना इसके बारे में यही आता है। आइए देखते हैं कि कीना क्या होता है और इसके बारे में क्या कहना चाहिए। तो इसको उर्दू में हम बुगस भी कहते हैं, कीना भी कहते हैं, अरबी जुबान में इसको गिल कहते हैं, गैन लाम लाम। अगर आपने लफ्ज़ अभी आयतों में अगलाल सुना तो गिल की जमा अगलाल, जैसे आप देखिए कि पाँव में पड़ जाएं तो बेड़ियां होती हैं ना, हाथों में पड़ जाएं तो हथकड़ियां होती हैं, तो गले में जब कोई फंदा पड़ जाए तो उसको गिल कहते हैं। ये तो इसकी लुग़वी वजाहत हो गई ना कि गले का एक ऐसा घेराव कर दिया गया कि इंसान का सांस उखड़ जाए। लेकिन इसको कहते किसको, गिल किसको, ताकि मैं भी तो देखूं कि कहीं मैं इस रूहानी बीमारी का शिकार तो नहीं हूं। और इंशाल्लाह भी जब हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे तो हाथ ठंडे होने लगेंगे कि किधर गई मेरी तहज्जुदें, किधर गए मेरी नमाज़ें, किधर गया मेरा कुरान सुनना सुनाना। क्योंकि अफसोस की बात है कि आज उम्मत मुस्लिमा इबादत के नाम पे इबादत भी कर ही लेती है, रोज़े भी रख लेती है, नफिल भी पढ़ते हैं, लेकिन दिल अंदर ऐसी रूहानी बीमारियों से जकड़े हुए हैं कि फिर उन्हें इबादत का असर हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं दिखता। ये कैसे हो सकता है कि कोई एक इंसान इबादत करे और उस इबादत का असर उसकी ज़िंदगी में ना दिखे। तो आज ऐसे लगता है कि इबादत एक अलग खाते की है और इंसानी मामलात अलग हैं। आज के टॉपिक को आप एक दूसरे नाम से भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं कि इंसानी मामलात। जब हम इंसानों के साथ मामलात करते हैं तो क्या रुकावटें बन जाती हैं उसमें कि जो हमारी फिर उसमें खैर को रोक देती हैं, तो उसमें से एक चीज़ कीना है। कीना कहते हैं जब इंसान गुस्से के वक्त किसी वजह से मजबूरन बदला नहीं ले पाता और अपना गुस्सा उसको पीना पड़ता है, तो जब्त करने से उस शख्स के दिल पर जो एक बोझ पड़ता है ना दूसरे के बारे में, उसको कीना कहते हैं। थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए मासी है आप, चले मासी बेचारी की क्या औकात है, उसको तो छोड़ दीजिए, इंसानी रिश्तों में ही बात समझ आती है। सास और बहू, सास ने अपना हक कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करके भरी महफिल में बहू की कोई बुराई कर दी या उसको लेट डाउन कर दिया। अब बहू बेचारी बोल नहीं सकती किसी भी वजह से, लेकिन क्या वो सास की उस बात को सुनकर अंदर से खुश हो गई, खिल गई? नहीं खिली। क्या हुआ, उसने उस बात को सुना, मजबूरन पी गई, लेकिन उसके दिल में एक गांठ पड़ गई एक गिरा पड़ गई अपनी सास के बारे में कि आज इन्होंने अच्छी बात नहीं की। ये कह लीजिए कि कीने का नुक्ता आगाज है। जब एक इंसान किसी इंसान के साथ मामला करते हुए खुद पर ज्यादती होता देखे, एक वजह, या रह जाते ही किसी की कोई नेमत देखकर हसद और रकाबत का शिकार हो, आप कह लीजिए कि कीना हसद और रकाबत के अगली चीज़ है। तो ऐसे नेगेटिव जज्बात जो होते हैं फिर इंसानी ताल्लुकात में एक बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं। और आप देखिएगा कि ये कीना गैरों से नहीं होता, ये अपनों से होता है, अपने हम पेशा लोगों से होता है, जिन लोगों के साथ दिन रात उठते बैठते हैं उनके साथ होता है। फिर रंज और कीने में फ़र्क है। आप कहते हैं हाँ बहू को बहुत रंज हुआ होगा सास की इस बात पर, या बीवी को शौहर किसी के सामने बुरा कह दे, या बीवी कुछ कर नहीं सकती तो दिल में बोलती है कि ये क्या है, इस मर्द ने मेरे साथ ज्यादती की है। अब आप कहेंगे ये तो रंज है, इसको तो दुख कहते हैं ना। तो रंज और कीने में थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ी सी आवाज़ एक बच्चे की, वो रिकॉर्डिंग में आ रही है, थोड़ा उसके मुंह में कुछ डाल दीजिए, कोई खजूर वगैरह दे दें उसको। कीना क्या होता है? कीना तो अपने इख्तियार और इरादे से किसी की बुराई या बदख्वाही को दिल में रखने को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी बात से कोई रंज दिल को पहुंचे और तबीयत इसको मिलने को ना चाहे, तो ये कैफियत एक वक्ती सी इंसान को ये फीलिंग देती है कि मैंने अब इस शख्स से नहीं मिलना, ठीक है। तो ये गुनाह की बात तो नहीं है, लेकिन दुख की बात होती है। अब सवाल पैदा होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मामला अपनी मर्जी के खिलाफ देखता है, तो फिर उसके बाद वो क्या सोचता है? यानी आप ये कह लीजिए, मैं इसको आसान से आसान लफ्ज़ों में कहना चाह रही हूँ ताकि जिनको उर्दू के मुश्किल लफ्ज़ नहीं भी समझ आते वो भी समझ सकें, कि कीना जो है ना, इससे 8 मुख्तलिफ गुनाह शुरू हो जाते हैं। उर्दू में कह लें, दिल मैला होना, दिल खट्टा होना, किसी के मामले में इंसान को बस दिल पे बोझ पड़ गया। जैसे आप कभी कोई ऐसी चीज़ खा लें ना, तो आप कहते हैं मेरे सीने पे बोझ पड़ गया। कभी खाते ही थोड़ी देर लेट जाएं तो आप उठें तो आप कहते हैं मेरे सीने पे बोझ है। वो बोझ कैसे दूर होगा? आप लेमन पी लें, आप कोई ऐसी चीज़ ले लें डाइजेस्टिव सी, थोड़ी वॉक कर लें, थोड़ा 2-4 घंटे कुछ ना खाएं, ठीक हो जाएगा ना। लेकिन याद रखिए कि हम इंसानों की जिस दुनिया में रहते हैं ना, तो हम अकेले नहीं हैं। हाँ अकेले जान रहना है तो हम मुश्तरी पे चले जाएं, हम जुहल पे चले जाएं, हम प्लूटो पे चले जाएं, हम चांद पे चले जाएं, लेकिन हमारा दिल नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इंसानों से ही हमें दुख मिलते हैं, इंसानों से ही हमारी ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मैल नहीं खाती, लेकिन दिल इंसानों में ही लगता है। किसी के साथ मिलने बैठने बरतने के अंदर अगर हमें कुछ तकलीफ़ भी हो जाए, कुछ मामला बिगड़ भी जाए ना, इसके बावजूद भी हम तन्हा रहने से लोगों के बीच में रहने को पसंद करते हैं, क्योंकि इंसान उनसे है और उनसे मोहब्बत मानूस होना। तो लिहाजा राह चलते जब मिट्टी पड़ती है पाँव पे, ये लाजिम है पड़ेगी, चलते जाएंगे आगे से हट जाएगी, ये नेचुरल फिनोमिनन है। आप इंसानों में जहाँ भी रहते हैं, अब आप लोग तो परदेश में रहते हैं, आपका हो सकता है यहाँ कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम ना हो, रिश्तेदारों से कोई इतनी कुर्बत ना हो, कभी आप गए साल 2 साल बाद बड़ी मोहब्बत से प्यार से बातें हुई, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ दफ़ा हमारे दिलों में दूसरों के बारे में नेगेटिव ख्याल आते हैं और ये हमारा टेस्ट होता है। हम जहाँ होते हैं वैसे ही, एक क्लास में है तो 10 स्टूडेंट में कोई दो एक दूसरे के बारे में कीना रख लेते हैं, किसी का एक नंबर से दूसरे से कम हो गए, ज़्यादा हो गए, रह जाते का बैर, अगले को पता भी नहीं होता। तो ये कमज़ोर शख्सियत की अलामत होते हैं, अल्लाह ताला पे तवक्कुल ना होने की अलामत होते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं किया। अब जब आपके दिल में किसी के बारे में ऐसी नेगेटिविटी पैदा होती है ना, तो उससे 8 मज़ीद गुना आपके अंदर आते हैं। क्या क्या? नंबर एक, हसद। हसद जिससे कीना होगा उससे आप हंसा ज़रूर करेंगे, लाजिम है। बस दफ़ा आप अपने बच्चे को अपनी दोस्त के बच्चे से तकाबुल करने लगते हैं तो दोस्त से हंसा शुरू कर देंगे। कभी देवरानी जेठानी के रिश्ते में ऐसी मामले होंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि जब एक ख़राबी होती है तो ये होगी। फिर दूसरा गुना कीने की वजह से जो पैदा होता है ना, वो क्या है कि फिर आप अपने उस भाई या बहन या जिससे भी आप ये मामला करें उसकी मुसीबत पर खुश होते हैं। जरा सी उनको नुकसान पहुंचे तो अंदर ऐसे लगेगा ठंडक पहुंच गई, अच्छा हुआ ना, बहुत बड़ी बनती थी ना, चलो अच्छा हुआ मेरी नहीं है, इनको भी नहीं मिली, मेरे नहीं थे। वो कहते ना कि अपने मुझे नहीं मिली तो उनको क्यों मिली, इस तरह की कैफियत पैदा होती है। फिर तीसरा गुनाह कीने से जो इंसान की ज़िंदगी में आता है ना, वो कतए ताल्लुकी, हम मिलते ही नहीं, हमने शक्ल नहीं देखनी, ना हम इनको देखें ना हमें दुख हो, और आप कतए कतए ताल्लुकी, कितना बड़ा गुनाह। फिर इस तरह चौथा गुनाह क्या होता है कि इंसान अपने उस मुसलमान भाई बहन को हकीर और जलील समझने लगता है। जिससे आपके दिल में कीना होगा ना, आप उसको हकीर समझेंगे, लेट डाउन, ये गांव के लोग, ये कम पढ़े लिखे लोग, ये फलां, ये कमी कमार, बाज़ लोगों को अपनी ज़ात का गुमान हो जाता है, हम ये फलां, बाज़ दफ़ा बाज़ लोग अपनी बहुओं को, ये छोटे ख़ानदान की, ये बड़े ऐसे हकीर थे, ये किन की लड़की हम ले आए, इस तरह की बातें। अब आप सोचिए एक इंसान जो खुद उसी तरह पैदा हुआ जैसे दूसरा पैदा हुआ है, एक इंसान जो दिन में उन्हीं गंदगियों से गुजरता है जिसमें बादशाह भी गुजरता है, फकीर भी गुजरता है, क्या उसको हक पहुंचता है कि किसी दूसरे को हकीर समझे? लेकिन ये इंसान के अंदर शैतान डालता है। फिर चौथी चीज़, पांचवी चीज़ क्या होती है कि जिससे फिर आप कीना महसूस करते हैं ना, आप उसकी गीबत करने लग जाते हैं, वो दिल की आग को ठंडा करने के लिए क्या जहाँ बैठे फिर उसकी बात की, तुम्हें सुना तुमने ऐसे झगड़ा पड़ा हुआ है, ये हो गया, मियाँ के साथ ऐसी है, बा के साथ ऐसी वैसी है, फिर उसे अगला जुर्म इसी के साथ मिलता हुआ लिख लें, ऐब लगाते हैं आप, कुछ ना कुछ आप उसका ऐब दूसरे को सुना के ही आएंगे, अगले को नहीं भी पता ना तो आप इशारा कराएंगे, देखिएगा ज़रा आप ये इनको देखिएगा ये होगा। फिर इसके बाद अगला क्या है, कैसे बंदे का फिर आप मजाक भी उड़ाते हैं, तमस्खर उड़ाना, इस्तेहज़ा, क्योंकि आपने हर मुमकिन तरीके से उसको नीचे दिखाना है, तो आप उसके लिए एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी चीज़ पे आते हैं। फिर बाज़ दफ़ा हद गुजरती है कि आप हाथ से भी अजियत देने लग जाते हैं। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो जो पहला बच्चा होता है ना ज़रा सा बड़ा, वो अपने छोटे भाई को मारता, कभी तकिया उसके मुंह पे रखेगा। अब हम ये नहीं कहते कि बच्चों में कीना होता है, लेकिन बच्चों में इसके जरासीम ज़रूर होते हैं, उनको गुनाह सवाब का नहीं पता होता, लेकिन बहरहाल ये कि एक बच्चे के आने पे दूसरा बच्चा सोचता है कि मेरी मोहब्बत झेले गया, और वो जिसको सिबलिंग जेलेसी कहते हैं ना, अब मेरी माँ उसको ज़्यादा देखती है, ये रोता है तो मैं माँ उधर जाती है। और आप नोट करेंगे कि पहले एक बच्चा ठीक होता है, जो ही दूसरा बच्चा आता है ना, तो पहला बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, वजह क्या, वो कॉपी कर रहा है कि छोटा बच्चा रोता है तो माँ भागती है, तो ये कहते हैं मैं भी रोऊंगा तो माँ मेरे पास भी आएगी। तो इस किस्म की कैफियत जब होती है तो इंसान बाज़ दफ़ा हाथ से तकलीफ़ देता है। फिर आठवां, इससे क्या, एक बहुत ही बड़ा गुनाह जो लाहक होता है कि फिर इंसान हकूक़ की अदायगी से गाफिल हो जाता है। आपका रिश्ता हो सकता है उनसे कोई, आपकी ज़िम्मेदारी है वो, लेकिन कीने की वजह से हम उसके हक़ को नहीं अदा करते। और अगर आप ये आठों चीज़ों को लिख कर देख लें, ये सब हराम है, एक कीने ने आपको एक हराम काम पर माइल कर दिया और मजबूर कर दिया, तो फिर सवाल पैदा होता है कि कीना क्या है, इस्लाम में उसकी क्या जगह है, तो आप लिख लीजिए ये ममनू और हराम है। और कीने की ज़िद भी कोई होगी, क्योंकि चीज़ों को उनके ऑपोजिट से समझते हैं ना, तो कीने की ज़िद अफ़ और एहसान है, किसी को माफ़ कर देना, दरगुजर करना। अफ़ और एहसान क्या होता है कि दिल में बात आई, रखी नहीं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना मिट्टी पाओ, जाने दो। देखिए होगा, ये कभी नहीं हो सकता दुनिया में रहते हुए कि आपको किसी की बात बुरी ना लगे, कोई आपको दुख ना दे, ये तो होगा। जैसे आप अभी रोड से गुजर के आई, तो क्या ऐसा हुआ कि रोड पे सिर्फ आप ही की गाड़ी थी, इधर से भी आ रही थी उधर से भी आ रही थी, कोई जल्दी में था, किसी को इधर मुड़ना था किसी को उधर, आपने क्या किया, अपना रास्ता देखते रहे और बचाव के साथ आप आने वालों को रास्ता भी देते रहे, इंडिकेटर दे दे के मोड़ के इधर गाड़ी ले आए। यही ज़िंदगी में करना है, सब आपकी स्पीड के नहीं चलेंगे, सब की डायरेक्शन वो नहीं होगी, सबका पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं होगा जो आपका है, तो आप क्या करें, माफ़ कर दें, जल्दी से माफ़ करना, हत्ता कि अपना हक भी छोड़ देना। किसी ने आपको इवन ऐसा सताया कि आप कसास ले सकते हैं, माफ़ कर दीजिए। किसी ने आपसे कर्ज़ लिया हुआ है, आप कर्ज़ उसका माफ़ कर दें, कुछ भी करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपना हक सिर्फ अल्लाह के लिए छोड़ दे, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے. ہم ساری زندگی اپنے کردار کی حمایت کرتے رہتے ہیں, مجھے یہ تکلیف دی میں تو اب مزہ چکھاؤں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, لیکن ہمیں جہاں اللہ سے انعام ملنا ہوتا ہے نا, اس وقت ہم ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ چونکہ عموماً رشتہ داروں میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صلہ رحمی کرو, جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو, جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو, جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. اب یہ مشورے کیا ہیں کہ اس طریقے سے تمہارے کینے ختم ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے, تمہارے دل سے نکل جائیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے کہ نہیں, کوشچن ہے نا. اور آپ دیکھیے گا جتنی آج جسمانی بیماریاں ہیں نا, اس میں سے اکثر کا سبب روحانی ہے. جو لوگ خوش رہتے ہیں, جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے, آپ دیکھیں ان کو شوگر کوئی نہیں ہوتی. میں نہیں کہتی اب سارے شوگر کے پیشنٹ جب وہ کینے والے ہی ہیں, لیکن مانیے آپ اس بات کو, نیگیٹو اپروچ جو ہے نا وہ بندے کو بستر پہ لے جاتی ہے. ڈپریشن ہو, سٹریس ہو, ہائی بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اعصاب کا کھچاؤ ہے, پٹھے کھچ گئے, جوائنٹس کی درد ہے, اب میری کمر میں یہ ہو گیا. آپ فیل کر کے دیکھیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں اندر سے خود کو کھینچ دیں. راضی برضا ہے, نصیب میں ہے, آپ کو زیادہ مل گیا خوش ہو لیں, کتنے دن کی بات ہے. چلے میں آپ کا دیکھ کے خوش ہوں, آپ کو اللہ نے 6 بیٹے دیے, کوئی بات نہیں, میں آپ کے بیٹوں کو اپنا سمجھ لوں گی. کھلے دل والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں یہ بیماریاں نہیں ہوتی, وہ اس سے بہت اوپر سوچتے ہیں. لیکن کھٹی بھی سوچ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں لیتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامتیں کیا ہیں, تو اس کی ایک علامت تو کیا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے عداوت ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہی باتیں سمجھانی ہے کہ کینہ نہ کرو, حسد نہ رکھو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. پھر دوسری علامت جس کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے آپ کے خاندان میں یا آپ کے ملنے والوں میں یا آپ کے جاننے والوں میں, کہ جب اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچے تو آپ کو اندر ایک ہلکی سی ٹھنڈک کا احساس ہو. اگر کسی بہن بھائی, رشتہ دار, سسرالی یا کسی رشتہ دار کے لیے آپ کو ایسا فکر ہوتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے, تو فکر کی بات ہے کہ آپ کہیں اس سے کینہ تو نہیں رکھتے. پھر ایک اور چیز, کسی کی مدد کے وقت جب اس کو آپ کی ضرورت ہو, حاجت ہو, اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے, یہ بھی ایک علامت ہے. یعنی ایک انسان کے دل میں وہ درد مندی چلی جاتی ہے, کرے خود اب بھگتے خود, اور خاص طور پہ ایک وقت پہ جب اگلا بندہ بہت مجبور ہے, اس کو ضرورت ہے, تو آپ مزے سے کہیں دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا, اب مزہ چکھیں, اب لوگوں کو بھی پتہ چلے. پھر اسی طرح اس کی ایک علامت کیا کہ ہر وقت اس کے عیب کی ٹو میں رہنا. آپ خود سے پوچھئے, کسی دوست, کسی سہیلی, کسی بہن کے عیب تو نہیں ٹٹولتی رہتی ہر وقت, کوئی بیڈ بات پتہ چلے. اور یاد رکھیے, بعض وقت ہم سیاسی لیڈروں سے بھی کینہ رکھتے ہیں, چھوٹی سی ان کی خبر ایسے مشہور کرتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا آپ کا نقصان ہو گیا. اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے اور کسی کی شادی ہو گئی ہے, تو بس پتہ نہیں لڈو تو آپ کو ہی ملنے تھے, بھائی آپ کو کیا لگے, یعنی ٹو میں لگے میں, پتہ چل جائے پھر ذرا ایسے خبر دوسروں کو دیں گے جیسے کوئی وحی کی خبر ہے, جو ہم نے نہ دی تو اللہ کے نبی کے مجرم ہو جائیں گے. بیکار بےتکی چیزیں, خام خواہ انسان ہر وقت دوسری چیزوں میں رہے. پھر اسی طرح ایک اور علامت ہے, خود سے پوچھئے کہ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر عموماً میں کس کی برائی کرتی ہوں, یا کسی کی برائی سن کر خوش بھی ہوتی ہوں اور دوسروں کو احساس دلاتی ہوں کہ فلاں شخص برا ہے. کسی کے بارے میں اگر آپ ایسا سوچیں گی نا, تو آپ مان لیجئے کہ آپ اسے کینہ رکھتی ہیں. پھر اسی طرح سے خاندان کا یا ملنے والوں میں سے کون ہے جس کی ترقی اور کامیابی کا سن کر مجھے چبھن ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے لوگ مبارک دینے جا رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں جل رہے ہوتے ہیں, خوشی کوئی نہیں ہوئی رشتہ ہونے کی, گھر میں 100 باتیں کی, لیکن اب جاتے ہیں دے ہیں مبارکات دے ہی آئیں, پھر وہاں جا کے کیا کہتے ہیں, بڑی خوشی ہوئی, ویسے دے سوچ کے کرنا تھا, آپ نے دیکھ لیا تھا, تحقیق کر لی ہے, یعنی اندر کہیں لگی ہوئی آگ, لیکن اب مجبوراً دنیا دکھاوے کو دکھانی پڑتی ہے. ہاں پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے, جہاں موقع ملے آپ کسی کو نیچا تو نہیں دکھانے کی کوشش کرتی. جس کو آپ کہتے ہیں نا شریکہ, اٹ پٹکا, पंजाबी में कहते हैं, ऐसे रात जाते किसी के साथ आपका कंपटीशन है। और बास लोग कहते हैं, फुला हमेशा मेरे मुकाबले पे रहती हैं, जो मैं करती हूँ वो यही करती हैं, और बस ये तो मुझे ही कॉपी करती हैं, जो मैंने ले लिया इन्होंने ज़रूर लेना है, जो मैंने किया इन्होंने ज़रूर करना है। जैसे वो एक किस्म की मुकाबलेबारी की बात है ना, कि मुकाबलेबाजी की बात है। फिर इसी तरह बादशाह आप देखते हैं कि कोई उस बंदे की कोई तकलीफ़ दूर करना या उसको फ़ायदा देना चाह रहा है, मिसाल है उसको माली फ़ायदा हो सकता है किसी चीज़ से, या रिश्ता उसके घर में भेजने वाले हैं किसी बच्चे बच्ची का, तो आप फ़ौरन कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह उसका रुख उधर से मोड़ कर कहीं और कर दें, इधर ना हो। देखिए बाज़ ख़ानदानों में ऐसे ऐसे भी रिश्ते होते हैं कि वल्ला ही आपने कुछ नहीं करना होता, आपने अपने बच्चे का रिश्ता उधर कोई नहीं करना होता, आपका है ही नहीं कि उसके लेवल का या उसके मुकाबले का या उसके जिसको कहना चाहिए जोड़ का, लेकिन बस ये होता है कि इसका उधर ना हो, इसको यहाँ क्यों मिल गया, इतने अच्छे घर में इनकी बेटी क्यों चली गई, तो ये भी कीने की अलामतें हैं। फिर इसी तरह से बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर उसके फ़ायदे या कामयाबी में अपना हिस्सा नज़र आए तो अपना हाथ खींच लेना ताकि मुकम्मल तौर पर उसको कामयाबी ना मिले। यानी सारी बातों का खुलासा क्या है कि एक इंसान दूसरे को नुकसान देने के डर पे रहता है। अब सवाल पैदा होता है कि बुग़्ज़ और कीना दिल में जब होता है तो उसके नुकसान क्या है, यानी दूसरे को नहीं आपको क्या नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान कैसे बंदे का दिल हर वक्त जलता और कुड़ता रहता है, गमज़दा रहता है, दिल में गम पाला होता है। और आप देखें कुछ लोग सारी ज़िंदगी उनकी इसी गमों में गुजरती है, कुड़ते रहते जलते रहते। फिर इसी तरह से आप देखिए जिस दिल में कीना होता है ना उसके आमाल कबूल नहीं होते। मुझे इस वक्त हवाला सामने नहीं है, लेकिन जो मुझे खुलासा याद आ रहा है कि लैलतुल कदर यानी ताक रातों में से वो रात जिस रात की इतनी फजीलत है, उस रात इबादत करने वालों को अल्लाह ताला बख्श देता है, सिवाय उस शख्स के जिसके दिल में कीना हो। अब इमेजिन करें, इतनी मेहनत करके इबादत की, रात को जागे, जो कर सके किया, तो पता चला वो कीने की वैक्स लगी हुई थी रास्ते में, इबादत का असर ही ना हो सका, किसका फ़ायदा हुआ उसका कि आपका नुकसान। तो जितना एक इंसान बुग़्ज़ में रहेगा ना उतना उसकी बख्शिश मुश्किल है। फिर इसी तरह से अल्लाह की रहमत से दूरी होती है। फिर इसी तरह नेकियां करके जन्नत का मुस्तहिक था, जहन्नुम का होने लगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह की नाराज़गी ऐसे शख्स पे, अल्लाह का गुस्सा टूटता है ऐसे बंदे पे जो दिल में बुराई रखता है, और ऐसा शख्स अल्लाह और उसके रसूल के वादों और वईदों का मुस्तहिक होता है, यानी उसके लिए बड़ी महरूमी की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तनाबजू, देखो एक दूसरे से कीना न रखा करो। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। फिर इसी तरह तिरमिज़ी और मुसनद अहमद की रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगली उम्मतों की मोहलक बीमारी यानी जिस बीमारी ने उनको हलाक कर दिया, हसद और बुग़्ज़ तुम्हारी तरफ चली आई है, ये बिल्कुल सफाया कर देने वाली है और मूंड देने वाली है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वो बालों को मूंड देती है, बल्कि वो दीन का सफाया कर देती है। आप इस हदीस को सुने ना तो मेरे जहन में वो शेवर आता है, नाई को देखा होगा कभी बाल जब काटता है तो पूरे सर के बाल मूंड देता है ना। फरमाया दिल में कीना और बुग़्ज़ हो तो नेकियाँ शेव हो जाती हैं, और आप सोचिए कि फिर वहाँ खैर कैसे होगी। फिर इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत, आप पूरी लिख के अपने दिल में लिख लें, यहाँ लिख लें और उसको लटका दें अपने घरों में। आपने फरमाया कि हर हफ्ते में पीर और जुमेरात को लोगों के आमाल पेश होते हैं। आप ये तो जानते हैं ना, हदीस सुनी होगी, इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। तो फरमाया कि हर हफ्ते में पीर और जुमेरात को लोगों के आमाल पेश होते हैं, तो हर बंदे मोमिन की माफ़ी का फ़ैसला किया जाता है सिवाय इन दो लोगों के जो एक दूसरे से कीना रखते हों, बस इनके बारे में हुक्म दे दिया जाता है कि इन दोनों को छोड़े रखो जब तक कि ये आपस के कीने और दुश्मनी से बाज ना आ जाए। कितनों को मान है कि हमारी इबादत हमें फ़ायदा दे रही हैं, हमारे पीर के रोज़े और जुमेरात के रोज़े फ़ायदा दे रहे हैं। देखिए मुझे जो बात समझ आई है ना, इस्लाम को थोड़ा सा समझ के पढ़ के, इस्लाम इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप। बज़ाहर हम अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन वो बंदों से ताल्लुकात में झलकती है। सब कुछ, खुशी, गम, तकलीफ, बीमारी, सेहत, सब कुछ जमा करेंगे ना तो आपके लोगों के साथ ताल्लुक की बुनियाद पे आप खुश हैं। और आपकी असल जो नीड है ना वो यही है कि आपके इर्द गिर्द का एक खूबसूरत माहौल हो। किसी भी ऐसे शख्स का आप तसव्वुर में लेके आइए कि जिसको आदत है, और मुझे किसी की बात याद आती है कि वो कहते हैं कि मैं किसी, मुझे नहीं पता आप में से किसी का है नहीं, लेकिन लोग फेस रीडिंग करते थे पहले दौर के ना, तो किसी की आंखों के इर्द गिर्द यहाँ ऐसे छोटी सी चीज ना वो लाइनें होती हैं, यानी यूं करके देखने का, जैसे कुछ लोग यूं देखते हैं ना तो फिर उम्र के साथ यहाँ ना लाइनें पड़ जाती हैं और आंखें थोड़ी सी अंदर जाती हैं ना। तो किसी बड़े लोग जो फेस रीडिंग करते थे उन्होंने कहा कि किसी की आंखें अगर ऐसी देखो ना तो ये कीने वाले दिल की अलामत है। यानी उसने हर एक ही चीज़ को ऐसे देखना है कि बस वो खा जाए या होका। बास लोग हैं किसी के घर शादी में जाकर, अच्छा अल्लाह हमारे भी बच्चों के करे, अच्छा अल्लाह फिर हमारी भी बहू बेटियों को इतना ही रिस्क दे, ये कीना है। और सिर्फ कीना इसमें ना बोले, इसमें मुझे तो नेगेटिविटी की हद दिखती है। ऐसा शख्स अल्लाह की बांट से राजी नहीं है, इसको अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं है। और ऐसे बंदे को सोने जैसी चीज़ भी मिल जाए ना खुद, वो हल्की लगेगी और दूसरे की पीतल की भी चीज़ उसको बड़ी अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला ने इस चीज़ की बात की। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे लोग जब दूसरों के साथ ऐसा मामला करते हैं तो उनको करना क्या चाहिए, इलाज क्या है? पहली बात है कि ऐसे लोग जो भी इस तरह के लोग हैं, आप अपने दिल में महसूस करती हैं, चले हम इसको पहले देख लेते हैं कि आपको महसूस होता है वाकई कि कोई एक शख्स ख़ानदान का ऐसा है कि जिसके लिए मैं सोचती हूँ, तो फर्स्ट थिंग यह है कि ऐसे बंदे के लिए अल्लाह से पहले आप दुआ करें। अभी आपको दुआ भी याद करवाती हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या कुरान पाक की दुआ है, लेकिन पहली बात समझ लीजिए कि दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे दिल को हर किस्म के गिल और कीने से पाक कर दे। और आपको पता है कि जिंदा लोग तो जिंदा लोग, अल्लाह ताला तो दुनिया से गए हुओं के बारे में भी दुआ करवाते हैं। मैं आपके सामने पढ़ती हूँ सूरत हशर की आयत नंबर 10 है, ये रेफरेंस लिख ले बाद में आप याद करें। और ये फ़ाइनी करीब जिन लोगों ने याद की है दुआ इसमें, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है 28वें पारे की दुआ में। आइए पढ़ते हैं, रब्बना अग़फिर लना वली इख्वानिना लज़ीना सबकूना बिल ईमानी वला तजअल फी कुलूबिना कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। इसका तर्जमा क्या है कि रब्बना अग़फिर लना, ए हमारे रब तू हमें माफ़ कर दे, वली इख्वानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों को भी जिन्होंने ईमान में हमसे सबकत की, यानी जो हमसे पहले ईमान ले आए। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कीना ना डाल, बुग़्स ना हो हमारे दिलों में। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, ए हमारे रब बेशक तू ही माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। आप इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कभी आपको महसूस होता है, और देखिए बस चीज़ें ख़ानदानी होती हैं, बाज़ दफ़ा बचपन से किसी एक शख्स के साथ रहने की वजह से ऐसी आदतें आ जाती हैं, अच्छे अच्छे लोगों में ऐसी आदतें आती हैं। आप एक एक चीज़ को ऐसा ऐसा सीखते जाएं और अपने आप को उससे पाक करते जाएं। तो पहली चीज़ तो दुआ है। दूसरा नुस्खा क्या है कि जिससे आपका दिल मैला है, दिल खट्टा है ना, आप उससे मिलजुल बढ़ाएं, बजाय इसके कि आप उससे कटें। शादी में मुलाकात हुई तो अवॉइड किया, सामना करने से रुके, कोनियों से बताया फ़लाँ है फ़लाँ, मैं नहीं सलाम करती, मैं नहीं बोलूँगी, उस टेबल को छोड़ के दूसरी पे बैठना नहीं, आप उनके साथ मेलजोल बढ़ाएं। फिर अगली चीज़, छोटा बड़ा जो आपकी हैसियत है तोहफा दें, गिफ्ट दें। आपको तो हदीस में आता है कि तहादू तहाबू, हदिया दो मोहब्बत बढ़ाओ। दो चार पाँच दस की चीज़ लेके घर में रख लें जिससे दिल में ज़रा सी रंजिश है, उसको फ़ायदा हो ना हो तोहफे का, आपको फ़ायदा होगा कि आपका दिल उसके लिए खुश होगा। देखिए जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो उससे पहले कितने मरहले होते हैं जिससे आप खुश हो रहे होते हैं ना। अच्छा ख़रीद रहे हैं, आप पैक कर रहे हैं, अच्छा अब देंगे, अब उनको अच्छा लगेगा, खुशी से करते हैं ना हम। जब तो जब आप किसी ऐसे बंदे के लिए जो आपको अच्छा नहीं लगता जब ये करेंगे तो एक तो आपका अपना नफ्स मरेगा, मोटा नफ्स है वो पतला होगा, नफ्स का वेट इसी तरह ही लूज़ करें कि उसको दबाएं। फिर जब आप उसको देंगे, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा आपसे नफरत करता बैठा और आप उसको तोहफा दें तो उसके दिल में आपके लिए एक इंच सही जगह ना बने, ये मुमकिन है? ये इतना कामयाब नुस्खा और एक छोटी सी दो लफ्ज़ों की हदीस है, तहादु तहाबु। तो पहले तो हम तोहफे किनको देते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, अब किनको देने? तो पता चला आपने कल एक दूसरे को तोहफे दिए तो पोल खुल गए, अब एक हफ्ता तक कोई किसी को तोहफा ना दे जब तक ये दर्द भूल नहीं जाता। पता चला अच्छा जी ये आप कीना और बुगज़ रखते हैं। और देखिए हमारे असलाफ ऐसे ही थे, हसन बसरी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि किसी ने उनको आकर बताया कि फलां शख्स वहाँ बैठा आपकी बुराइयाँ कर रहा था। कहते हैं अच्छा, किसी को बाजार भेजा, कहा जाओ फ्रूट का ट्रे लेकर आओ, बास्केट या टोकरा लेके आओ। टोकरा लिया, उसमें खूब अच्छे अच्छे फल जमा किए, ड्राई फ्रूट कुछ भी करके अच्छी सी टोकरी बनाई, तो कहा जाओ उसके घर दे आओ। और वो पूछे तो फिर कहना, खैर वो जब उसको भेजा तो उसने कहा कि किसने भेजा? कहा हसन बसरी ने भेजा। क्यों भेजा है? तो उन्होंने कहा कि भाई आपने तो मुझे इतनी कीमती चीज़ दी है तो अभी फ़िलहाल वो तो मैं नहीं दे सकता, तो जो मैं मेरे तौफीक थी मैंने वो आपको दे दी। क्या मतलब? आपने गीबत करके मेरी मुझे अपनी नेकियां दी, तो मैं अब उसके बदले में क्या आपको फल भी ना दूं? अब मुझे बताइए क्या दिलों के कीने बाकी रहेंगे? तो ज़रूरत है इस बात की कि तोहफे देकर करें। फिर इसी तरह अगर वो शख्स उम्र में आपसे छोटा है तो सोचिए कि ये तो मेरे बच्चों की बराबर है, मैं इसकी तरक्की से इसकी खुशी से कैसे दुखी हो सकती हूँ। और अगर वो शख्स उम्र में आपसे बड़ा है और आप खामखई उससे जैसे सास ही हैं बड़ी, तो दिल में खट्टापन है, तो सोचें कि सास हैं तो मेरी माँ होती इनकी जगह, तो क्या मैं उनके साथ ऐसा मामला सोचती? यानी उनकी उम्र को एक किस्म पे मामला कर लें। फिर इसी तरह से एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि अमूमन दिल खट्टे वहीं होते हैं जहाँ हम किसी के पास अपने से ज़्यादा चीज़ देखते हैं, किसी भी तरह की जान माल औलाद, हत्ता कि किसी का आधा नंबर हमसे ज़्यादा आ गया दिल में खटपड़ गई, ये इन्होंने ज़रूर कोई किसी से नंबर लगवा लिए होंगे। आपके साथ तो नहीं ऐसा होता? अल्हम्दुलिल्लाह है आधे आधे नंबर पे, आपने उसकी टाइट मार्किंग की है मेरी लूज़ की है। अगर कोई स्टूडेंट ये बात सोचता है ना तो बस उसको उस बिला पढ़ने की ज़रूरत है, वो तो बड़ी फेवरेट है, उनको तो बड़ा आगे आगे रखते हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, हमें बाथरूम की ड्यूटी दे दी, उनको आपने कुर्सी लगा के दे दी, ये सब अंदर चीज़ें रहती हैं। आप देखेंगे तो भाई बहनों में क्या कुछ है। अगर कभी इस वजह से आपको महसूस हो तो उस वक्त आप कुरान की वो आयत याद कर लें कि हमने तो लोगों के दरमियान रिस्क को तकसीम किया, यानी ये अल्लाह की बांट है। तुम वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, ना तमन्ना करो उन चीज़ों की जो अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर दे दी हैं। फिर इसके बाद एक और चीज़ सोचिए कि जो मुझे मिलना था वो कोई छीन नहीं सकता और जो मुझे नहीं मिलना वो मुझे कोई दे नहीं सकता। अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा आतैत वला मोती लिमा मनात वला यनफौजल जद दिमिनकल जद। कोई देना चाहे रब ना चाहे तो मिलेगा नहीं, और कोई ना देना चाहे छीनना चाहे रब देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। और किसी फ़ायदे वाले को, नफ़े वाले को, चीज़ वाले को उसकी चीज़ फ़ायदा नहीं देती जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहता। तो आप अपनी तकदीर पे राज़ी रहे, ठीक है? फिर इसी तरह से खलूस दिल से उस शख्स की तरक्की के लिए दुआ करें, खुद दुआ करें अल्लाह उसको ये दे, अल्लाह उसको एक और बेटा दे, अल्लाह उसके बच्चे के और एस भी आए, अल्लाह ताला उसके शौहर उससे और भी मोहब्बत करे। बाज़ दफ़ा मैंने देखा अपनी रवा रवी में अपनी दोस्तों को किससे सुनाती हैं औरतें अपने शौहर की मोहब्बत के, अब वो तो फ़ख्र से सुना रही हैं और दूसरी के दिल पर ओस पड़ रहे, अच्छा मेरे तो नहीं करते, वो कहती मेरे मियाँ तो चाय भी, अच्छा अच्छा मेरे मियाँ तो कपड़े भी सरी, बस वो अंदर ही डूब गए हैं। अब आप जब भी कभी अपनी दोस्तों से कोई बात करें तो ज़रा अगले का फेस भी देख लिया करें कि वो बेहोश तो नहीं होने वाली हो गई, और वो वहीं सोचे आज जाके पूछूंगी, आज जाके सुनाती हूँ, पता चला आप अपनी वो तारीफ़ें करवा रही हैं और वहाँ घर में लड़ाई पड़ गई है। बस लोग ऐसे होते हैं ना, तो तकाबुल नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो एक मर्द भी करते हैं, औरतें भी, जैसे कहा कि एक शौहर था तो वो अपनी बीवी से कहता है कि वो तुम किसी का भी नाम लेता, अब कोई भी नाम रख ले, तो अपनी बीवी से कहता है कि वो तुम्हें नहीं पता, वो अब्दुल्ला कह लें, कोई भी नाम ले लें, ऐसी बात है बनी हुई। तो वो अब्दुल्ला की बीवी कितनी उसकी खिदमत करती है, वो आता है तो वो उसके आगे जूते रखती है, फिर वो आता है उसका बैग उठाती है, फिर उसको कितना, यानी दो चार बातें कही, और एक तुम, तो कहती है कि मैं तैयार हूँ, आप उससे पूछ लें। यानी अब ये एक बात है ना बनी हुई कि दूसरे की बात करना कितना आसान होता है। तो अगर बीवी शौहर को और शौहर बीवी को एक दूसरे की बातें सुनाते रह जाए तो फिर जिंदगी की गाड़ी तो नहीं चलती ना। खुद को भी तो देखें, आप में कितना गुण है। हो सकता है वो बेचारे एक शौहर जो बेगम की खिदमत करते हैं, उनकी बेगम कितनी मोहब्बत करने वाली हो, आप वो हो सकते हैं कितने हंसते माथे वाली हो, वो कितनी खुश दिखती हो, खुद ही मियाँ का दिल करता हो कि शायद अभी हमारी नई शादी हुई है और आपने उनको देखकर तेवरी ऐसी चढ़ानी है, और माथे पे आपके बल पड़े हुए, वो बेचारे तो पहले ही वक्त से पहले बूढ़े हो गए, अब वो आपके लड़कियाँ देखें। तो बात सिर्फ हम खुद को नहीं देखते, दूसरे पे नज़र रखते हैं। फिर इसी तरह से जब कभी कोई अच्छी चीज़ बनाए, पकाएं खासतौर पर अपने हाथ से, तो अपने हाथ से बनी हुई चीज़ आप उसको ज़रूर भेजें। ये नहीं कि ज़रा चखाऊँ, ज़रा जलाऊँ, देखो आज मैंने कैसी अच्छी खीर बनाई है, फिर उसमें और गड़बड़ें शुरू हो जाएंगी। हाँ, तो आप जितना ज़्यादा दिल में अच्छा ख्याल रख के उसके लिए करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उतना ज़्यादा आपका दिल खुलेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इवॉइड करें किस चीज़ को, जिससे आपके दिल में उसके लिए कोई ख़राबी आती है, वो मौका, वो बातें डिस्कस ना करें, किसी से पूछे ना, टो ना रखें उन बातों की कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि उनका नुकसान है। फिर आप देखिए कि एक और चीज़ भी ध्यान में रखें कि ये दुनिया 4 दिन की है। किसी की तरक्की को देखकर, किसी की कामयाबी को देख, अगर आप जल कुड़ भी गए, अगले दिन क्या है, मौत। जब दुनिया में अल्लाह ने किसी को बहुत दे भी दिया और आपको आपके ख्याल में कम दिया, तो कितने दिन की ये कहानी है। अल्लाह ताला से ये कहें कि अल्लाह दुनिया में अगर मुझे तूने कोई कमी दी है ना, तो मुझे आखरत में वो तरक्की का ज़रिया दे दे। फिर इसी तरह से आप एक अपने लिए प्लानर बनाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब उसको वॉच करते हैं तो फिर वो सेट होती है, जैसे वेट वॉच करते हैं ना लोग, एक एक कैलोरी को गिन गिन के खाते हैं और किस किस तरह से देखते हैं, मसलन जी ये अंगूर में इतनी कैलोरी थी, आज एक ही खाना था तो बस खा लिया, दूसरे को देखते रहेंगे। है तो आप ख़ुद को वॉच करें। कैसे? मसलन आप एक चेकलिस्ट बनाएं। पहली बात ये है कि जो बातें भी मैंने आपको कही हैं इसको एक लिस्ट में लिख लें, जिसके लिए मेरे दिल में कीना है, क्या मैंने आज उसकी तरक्की के लिए दुआ की। फिर आगे आप लिखिए यस नो, और दिल से नहीं की या कम की। रोज़ चेक करें अपने आप को, शाम को बैठ के चेक करें, आज मैंने दुआ की, आज मैंने उसके लिए 2 नफिल पढ़े कि स्पेशली उसके लिए दुआ करूं, क्या मैंने अपनी मनपसंद चीज़ उसको तोहफे में दी, कुछ पका कर उसको भेजा। ये सारे पॉइंट्स को एक लिस्ट में बना लें, ठीक है। फिर आप देखें कि क्या मैंने आज इस बात को सोचा कि अगर मैं उसके बारे में जलूं कुड़ूंगी तो नुकसान मेरा ही होगा। फिर इसी तरह क्या मैंने ये दुआ जो भी हमने पढ़ी कि रब्बना अग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, इसको मैंने याद किया। और ये वाकई हम सबको याद करनी चाहिए, आज के इस दर्स का होमवर्क यही है कि हमें इसको याद करना है। फिर इसी तरह से आप ये भी अपने आप से पूछिए कि जब मैं किसी के ऐब ढूंढती हूँ तो क्या मुझे उस वक्त अपने ऐब याद रहते हैं। और ढूंढें जिस वक्त कभी आपको किसी का कोई ऐब दिखे ना, दिखते हैं हमें, सबको दिखते हैं, अपने कम दिखते हैं, उस वक्त फौरन अपने ढूंढिए। फिर इसी तरह जब कोई किसी की बुराई आपके सामने करे तो आप फौरन सोचें, इसी तरह कोई तीसरा बंदा मेरी भी कहीं बैठ के बुराई कर रहा होगा। फिर इसी तरह से आप खुद को चेक करें, मेरे अंदर कितने परसेंट चेंज आ रही है। अगर आप 1 महीना खुद को ऑब्जर्व करें, मैंने अपने दिल को कीना फ्री करना, मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं आएगा, मैंने दिल खट्टा नहीं करना, मैंने सबसे खुश रहना है, मुझे कुछ इस तरह से ये मैं अपने आप को संवारना चाहती हूँ, आप यकीन करें कि आप इतनी हसीन हो जाएंगी कि आप खुद को पहचानेंगे नहीं। बस जब हम सोचते हैं कि इंसान अच्छे कपड़ों से खूबसूरत लगता है, अच्छे जेवर से खूबसूरत लगता है, अच्छे घर में रहने वाला खूबसूरत है, वल्लाह ही ऐसा नहीं है। अच्छी आदत का हुसन जो होता है ना, अच्छा किरदार, अच्छा दिल, ये आपकी अच्छी जुबान को प्रमोट करता है। आपका दिल अच्छा होगा ना, आपकी जुबान अच्छी होगी। आप अपने अंदर सच्चाई ले आए, आपकी जुबान पे सच आने लगेगा। आप अपने दिल में किसी के लिए बुरा सोचेंगे, आप देखेंगे आपके चेहरे पे तनाव आएगा। क्या आप लोगों की फेस रीडिंग नहीं कर लेते? कुछ लोग उनको देखें खिंचे हुए, दुखी, परेशान, और कुछ को देखें ऐसे आपको लगेगा जैसे मुलायम। फर्क किस बात का है? पहली किस्म के लोग नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, वो खुद से भी खुश नहीं, वो बस दफ़ा अल्लाह से भी खुश नहीं होते, माँ बाप से भी नहीं लोग खुश होते, जो बेचारे पालते पोसते हैं, कहते हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। उनको ससुराल वाले अच्छे नहीं लगे, आगे उनको औलाद नहीं अच्छी लगी, अब आगे बहुएं अच्छी नहीं लगेंगी, उनको आगे पोते नवासे बहुत बच्चियाँ भी नहीं अच्छी लगती। वजह क्या है कि उनको आदत है हर चीज़ को दूसरी तरफ लेने की। फिर इसी तरह से एक छोटी सी चीज़ ये भी से समझ लीजिए कि अगर आपको फील होता है कोई आपसे करता है ऐसा मामला, ये भी तो पता लग ही जाता है ना, अब क्या करें? जी आप मुझे बताएं। यानी आपने तो इंशाल्लाह अपनी इसलाह करने की मुकम्मल कोशिश करनी शुरू कर दी, कोई राह जाते आपके साथ करता है ऐसा, तो आप क्या करेंगी? हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपसे पूछती हूँ फिर। जी आप इधर से। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, आप देखिए कि अपने आप से कहेंगे मेरा दिल को ट्रैश कैन है। ट्रैश कैन में क्या जाता है? बची खुची चीज़ें, गंदी चीज़ें, ख़राब चीज़ें, लेफ्ट ओवर, छिलके, गंदगी। आपका दिल गंदा? क्या आप अपने दिल की ये कीमत डालती हैं कि हर बेकार चीज़ उसमें डालें? खुद को पूछें कि मैं अपने दिल के अंदर क्या लाती हूँ। फिर एक चंद इसके बारे में जनरल चीज़ें जो प्रैक्टिकल होती हैं। बस दफ़ा में किसी से तकलीफ़ पहुँचती है, ऐसा भी होता है, अब क्या करें? फिर उससे कीना रखें ना रखें, आम लोग तो रखेंगे, और जो ख़ास लोग हैं ना, जिनको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, वो क्या करेंगे? सूरत नूर में एक वाक्य आता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की प्यारी बेटी सिद्दीका पर तोहमत लगाई। किसने लगाई तोहमत? उस लड़के ने जो अपने ही ख़ानदान का था, गरीब था, और अबू बकर सिद्दीक उसकी किफ़ालत भी करते थे, मस्तो नाम था उनका, बाकियों के साथ वो भी शामिल हो गया, और उसके मुंह से भी कुछ ऐसी बातें निकल गई जो कि अबू बकर को तकलीफ़ दे गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम खा ली कि बस मैं आज के बाद इसकी हेल्प नहीं करूँगा। जब पता चल गया कि मेरी बेटी पर तोहमत लगाने में मस्तो शामिल था, तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा कि आज के बाद ना मैं उनको वजीफ़ा दूंगा ना कुछ दूंगा। कहा अच्छा जी ठीक है, अब हक तो बनता था। आप सोचें, छोटी बात भी नहीं थी, जिना की तोहमत थी। अबू बकर ये सोचें तो अल्लाह अपने कुरान में सूरत नूर की आयत 22 में क्या कहते हैं? वल याफू, बस चाहिए कि दरगुजर करो। आफ कहते हैं जाने दो, दरगुजर करो। वल यस्फहू, और सरफे नज़र करो। सफ़ा कहते हैं ये हथेली को, पाम को, यानी अफ में क्या है कि इग्नोर करो, और यस्फहू में क्या है? दरगुजर करो। अला तुहिब्बुना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर दे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला और मेहरबान है। तो जब अबू बकर सिद्दीक ने यह आयत सुनी तो क्या कहा? जी अल्लाह ताला नुहिब्बु यग़फिरल्लाहु लना, कि अल्लाह हमें माफ़ करे। ना सिर्फ ये कि उन्होंने मस्तों को माफ़ कर दिया, बल्कि उनका पहले से ज़्यादा वजीफ़ा लगा दिया। तो आम लोग जो होते हैं ना, वो बात को रगड़ते रहते हैं, मेरे साथ क्यों किया? बाज़ लोग कहते हैं कब्र की दीवारों तक ये बात नहीं भूलेगी, मैं तो मरते दम तक इनकी शक्ल नहीं देखूंगी, ये मर गया तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर गई तो ये ना आए। और बाज़ ख़वातीन, अल्लाह उनको हिदायत दे, शादी के दिन जब वो ससुराल में कदम रखती है ना, उस दिन की उनको कोई बात याद रहती है सास की, और सास बेचारी दुनिया से चली जाती हैं लेकिन वो उस बात को नहीं भूलती। अल्लाह माफ़ करे मेरी सास को, थी बड़ी ज़ुबान की तेज़। भाई अल्लाह कैसे माफ़ करे, पहले आप तो उसको करें। कह भी देते हैं, और कोई बहू के बारे में सास के नेगेटिव जज्बे तो कहती, जिस दिन से ये भारी कदम वाली मेरे घर आई है ना, तो बस ये हो गया वो हो गया। तो आप याद रखिए, हम सब इंसान हैं। सूरत अल अराफ 199 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुज़िल अफ को पकड़ लो, वामुर बिल उर्फी और अच्छी बातों का हुक्म दिया करो, वारिद अनिल जाहिलीन और जाहिलों से इराज बरतो। तो जब कभी आपको कोई ऐसा सताए या आपको फील हो, तो क्या करें, दरगुजर करें, आप जाके कम्युनिकेशन कर लें, आप बात करें, सिस्टर मुझे कुछ लगता है आपके दिल में मेरे बारे में। पहले जैसे आप मोहब्बत से बोलती थी वैसे नहीं, क्या बात है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई बात है? आप यकीन करें, कम्युनिकेशन इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। जितना आप किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका रब्ता बहाल होगा। और दो रूठे हुए हों, शौहर बीवी है, माँ के घर बैठ गई बीवी और लड़का माँ की बातों में आ गया, आप एक दफ़ा उन दोनों को आमने सामने बिठा दें, आप देखिएगा कम्युनिकेशन होगी। ये जब हम दिलों में पाल के, और वही बात है कि ट्रैश फ्रेश ट्रैश होता है तो इतना बुरा नहीं लगता। एक दिन ट्रैश कैन में छिलके छोड़ दें, अगले दिन किचन का डोर खोलें, सुबह क्या होता है? और अगर खुदा न खास्ता खरबूजे के छिलके रह गए उधर, या आम के रह गए और खुली टोकरी पड़ी रही, तो कीड़े भी पड़े होंगे ना। ये दिलों में कीड़े पड़ जाते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। और जिन्होंने अल्लाह को राज़ी करना है, और स्पेशली मैं एक छोटी सी बात कहूँ, अल्लाह ताला सारी उम्मत को इस्लाह की तौफीक दे, जितना दीन का काम करने वालों के दिल एक दूसरे के लिए खुले और बड़े होने चाहिए, इतना दुनिया वालों को ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। क्योंकि दुनिया ले तो माल के पीछे भाग रहे हैं, आपके हिस्से के यूरो कोई और ले गया तो उसका तो दिल बैठना है, तो दीनदार की क्या ख्वाहिश है जी? माँ कद्दम उबासा रहूँ, मेरा मेरे आसार लग जाए, मेरे हाथों से सदका जारिया बन जाए। आप देखेंगे जब आप नेकियों की नियत करेंगे ना, तो आपको इसकी ज़रा परवाह नहीं कि किसी ने आपका नाम लिया, किसी ने आपको इज्जत दी, किसी ने आपको प्रोटोकॉल दिया। आप कहते हैं उसने कोई काम कर लिया ना अच्छा मेरे कहने पे, मेरा सदका जारिया वो बन गया। लेकिन आज दुख की बात है, हर बंदा अपने जैसे बंदे के साथ मुकाबले पे आता है। आज आप देखिए दीनदारों के क्या ताल्लुकात हैं। सियासतदान तो चले एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, ये तो हम बचपन से देखते आए और सुनते आए। आज एक मस्जिद वाले दूसरी मस्जिद वालों के लिए, एक आलिम दूसरे आलिम के लिए, एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती के लिए, एक मुकर्रर दूसरे मुकर्रर के लिए क्या अमूमन जुमले बोलता है? उर्दू बोलने वाला कभी किसी उर्दू बोलने वाले स्पीकर की तारीफ नहीं करेगा, अच्छा बोलने वाला किसी अच्छा बोलने वाले की तारीफ नहीं करता, अच्छा लिखने वाला किसी दूसरे अच्छा लिखने वाले की तारीफ नहीं करता। ये गिल है, दिल खुले नहीं है। आप देखिएगा जो वेस्टर्न लोग हैं ना, कभी मैचेस के एंड पे एक टीम हारती है एक जीतती है ना, तो दोनों क्या करते हैं? शेक हैंड करते हैं, हाथ मिला के जाते हैं, इट्स फाइन। ये इनको सिखाया जाता है, हम कहते हैं अभी शक्ल भी ना देखना, दुश्मनियों पे आ जाएंगे तो सारी नेकियां हाथ में रह जाएंगी। हैं क्या हमारे हाथों में? अब अभी तो चंद कंकर जमा हुए हैं, इसलिए अपने आप को हल्का रखें। और ये वो चीज़ें हैं कि जो इंशाल्लाह हमारे दिलों में से जब निकलती है ना, फिर मज़ा भी तब आता है और जो बरकत आती है। और मैं इसमें देखती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल कैसी है। मक्का वालों ने कोई कसर उठाई थी नबी सल्लम को सताने में? बताइए आप, 13 साल मक्की दौर के, आपने कभी किसी के बारे में कोई एक नेगेटिव जुमला सुना? आपने भी सीरत मुझे नहीं लगता कि शुरू की है ना अपने कोर्स में, आपने तो जलियात वो नहीं पढ़ी ना अभी, इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे। आप देखिए 13 साल दुश्मनों के बीच में अल्लाह के नबी घिरे रहे, थे वो अपने लेकिन दुश्मन बन गए पैगाम आने पे। 10 साल मक्का के, आप कह ले जानी दुश्मनों के बीच में थे आप, मदीना के यहूद, लेकिन एक भी आप नेगेटिव कमेंट लाकर दिखा दें सीरत की किसी किताब में, जो अल्लाह के नबी ने अबू जहल के बारे में, या आपने काब बिन उबई बिन काब के बारे में, सॉरी जो काब बिन मालिक के बारे में, या आपने किसी भी दूसरे के बारे में बोला हो कि देखो ज़रा ये मेरे बारे में क्या कहता सुनता है। हत्ता कि आपकी अपनी चची, वो नबी सल्लम की हज्व करती थी। हज्व किसको कहते हैं? मजाक उड़ाना। जब उसने देखा कि अल्लाह के नबी की तारीफ़ होती है, तो उसने, शायरा थी बहुत बड़ी, अदब पे उसका बड़ा हाथ खुला था, तो कहने लगी मुजम्म फीना वामरू अबीना नाउस बिला सुम्बा नाउस बिला। हमारे अंदर एक मुजम्म आया हुआ है और उसका मामला बड़ा सख्त है, हमने तो उसका इनकार ही करना है। लोग आके अल्लाह के नबी को बताते, आपको पता आपके बारे में क्या कह रही है, कहा किसके लिए कह रही है, कौन किधर मुहम्म, मैं तो मुजम्मम नहीं हूँ, मेरी माँ ने तो मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। इस तरह से इग्नोर ग्रेसफुली, खिल विद काइंडनेस। हमारा दीन हमें इतने खूबसूरत एथिक्स सिखाता है कि जब हम इस पे चलते हैं ना तो हमारा दिल खुल जाता है। आज आप देखिए कि लोग छोटी छोटी बातों पे अपनी निस्बतें बदल लेते हैं सियासत के मैदान में, जिधर का फ़ायदा उधर देखा चल पड़े। कहते हैं ना कि डूबती कश्ती से लोग निकल आते हैं, या वो जिधर घूमना जहाँ घूम गए। लेकिन जिनका दिल अल्लाह से जुड़ जाता है ना, उनको हर वक्त बस एक काम होता है कि हमने अपने इस आज के दिन से क्या खैर का काम लिया। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला, दिल से हर मनफी जज्बा निकाल दें, यहाँ बैठे बैठे उठने से पहले कहें कि मैंने सबको माफ़ किया, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हज़रत आयशा को क्या दुआ सिखाई थी मेराज के मौके, सॉरी लैलतुल कदर पालो तो क्या मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नक अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्व फ़ाफ़ु अन्नी। हम होते तो कहते आयशा बेटा मांग ले, ज़रा घर मांग ले, कोई अच्छे कपड़े मांग ले, तेरी अभी उम्र ही क्या है। नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी को पता था कि असल बात यह है कि असल वो चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में बेहतरीन कि जो उसको आखरत में बेहतर हो। तो अब आप चंद कोई सवाल करना चाहें करें, क्योंकि मुझे लगता है अभी हमारे पास नमाज में कितने मिनट हैं, 15 मिनट हैं। जी सिस्टर्स, कोई बात आप करें, क्योंकि टॉपिक बड़ा कॉमन है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई किसी के जहन में सवाल है और आपने बाद में जो मुझसे पूछना है तो यहाँ पूछे ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। जी जी आप बोलिए। जी आपकी आवाज़ समझ गई, यानी ये सवाल पूरा हो गया ना। जी आपका सवाल दोहरा देती हूँ ताकि इधर वाले लोग भी सुन लें, कि अगर इज्तमाई तौर पे हम देखें कि कोई शख्स उम्मत का दुश्मन है, कोई लीडर है, कोई कुछ है, या वो तकलीफ़ देता है पूरी उम्मत को, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, उसकी हिदायत के लिए दुआ की जाए। देखिए तड़प के दुआ करें, वो भी माओं के बच्चे हैं, उनको भी माओ ने पेट में रखा है ना। हम क्यों कहते हैं कि अल्लाह इनको आग में डाले, जहन्नम में डाले, आप ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह इनकी भी हिदायत का कोई ज़रिया बना। जब तक कोई ज़िंदा है उसकी हिदायत की दुआ करें, तड़प के दुआ करें, आप देखेंगे कि आपकी दुआ शायद उसकी ज़िंदगी को बदल दे। लेकिन इसकी फिर भी इजाज़त नहीं है कि बैठकर हम चुटकुले छोड़ें और लतीफ़े बनाएं और खाने के बाद फिर लोगों के गोश्त खाएं, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, और कोई बात? जी आप।
सुना था लेकिन मेरी लाइफ में नहीं था, लेकिन आज जो मैंने इस पे सुना है तो मुझे वाकई ये पता चल गया है कि कीना कितनी बड़ी बुराई है, कि इंसान के अमालों को या कि इंसान अल्लाह की रहमत से दूरी है। तो आप यकीन करें कि इधर बैठे बैठे ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि इंसान पाक साफ तो है नहीं कि कभी ना कभी किसी बात पे किसी पे आ ही जाती है बात। तो इधर बैठे ही मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगी है और आइंदा ना करने की भी अल्लाह ताला से ये मैंने दुआ की है कि अल्लाह ताला मुझे इस पे हमेशा कायम रखना कि मैं ना करूं, क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से ये इतनी बुराई नहीं थी। बस मेरा ये
जी, आप देखिए कि आपको कम से कम अपना 10 पाउंड वज़न कम लगेगा अगर आपने अपने दिलों से ये कह दी, जैसे ये कह रही है ना मैंने यही माफ़ कर दिया। मैं ये जोक भी था लेकिन ये रियलिटी भी है। हम लोगों की तकलीफ़ों का, उनके दुखों का बोझ उठाए उठाए फिरते हैं और उसकी वजह से हम बोझल हो जाते हैं, उसकी वजह से हम तकलीफ़ ज़्यादा हो जाते हैं। किसी को पता भी नहीं होता और आप उसे जल रहे होते हैं। आप किसी की तरक्की से जल रहे हैं, आप किसी की अच्छी बुरी बात पे जल रहे कोड़े, या तो इसका आसान तरीका ये कि कर लें। ये भी एक आपको टिप बता दूं कि 5 दफ़ा करीब रहने लें। मैं मिसाल देती हूँ आपको, एक घर में रहते हुए देवरानी जिठानी है, सास बहू हैं, माँ बेटी भी समटाइम। अब आपको लगता है कि इनकी आदत है कि ये मेरे उठते ही, मैं घर में नहीं होती तो ये दूसरे से मेरी बुराई करती। एक दिन हुई, 2 दिन हुई, किसी ने आपको बता दी, मिसाल है आपकी देवरानी कहते हैं आज आप गई थी ना, तो वो आपके फ़ोन पे आप अम्मी जान आपकी बातें कर रही थी सास की। अच्छा एक मिनट, अम्मी जान इधर आए, अम्मी को पकड़ कर ले आए। ये शनाज क्या कह रही हैं? अब एक तो शनाज क्या ठंडे हो जाएंगे, हाँ कि ये क्या हो गया भाई, आपने कहा है, अम्मी ने कहा है ना, आप अभी क्या कह रही थी शनाज, ज़रा दोहराइए। अब ये शनाज आप ही हैं तो मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आप में से कोई शनाज भी हो, हाँ। अब आप जब शहनाज को पता है कि जो बात मैंने इनको सुनाई है, इन्होंने अभी उनको बुला के मेरे सामने पूछने, अगली दफ़े शहनाज कानों को हाथ लगाएंगी, मैंने इनको अम्मी जान की बात नहीं बतानी। और अम्मी जान के साथ बुला कर बात करने में अगर आप बादब होकर रो ही पड़े, अम्मी क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, अम्मी जान क्या मैं आपकी माँ बेटी की तरह नहीं हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप मुझे बताएं, अगर आपको मेरे से कोई गिला था तो मुझे कहती। वही एकदम अम्मी जान ठंडी हो जाएंगी, नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, ये नहीं कहा था। अगली दफ़ा वो कभी बात करने से पहले ज़रूर सोचेंगी, कम्युनिकेट कर लें प्यार से, कह उनको कहते अम्मी मेरा बड़ा ही दिल दुख है आपकी ये बात पे, रो पड़े, जज्बात करें, गले लग जाएं, प्यार कर लें, दिस दैट दैट, आप करके देखिए, यकीन करें कि आपके ताल्लुकात अम्मी जान से पहले से अच्छे हो जाएंगे। हम कम्युनिकेशन नहीं करते, उसको कहते हैं उसको, फिर ऊपर आके मियाँ को कहेंगे ये आपकी अम्मी ऐसे करती हैं, आप समझाएं। अच्छा वो समझाने जाएंगे, आप अभी ना जाइएगा, फिर आप मेरा नाम आएगा, पहले उनको भरते हैं, फिर वो जा रहे बेचारे जाके फटते हैं, तो कहते हैं अब आप ना आगे से कीजिएगा। ये कैसे हो सकता, बेटों बेचारों को बीच में लाती हैं, उनकी तो चले जन्नत है, आपकी जन्नत नहीं भी, आप खुद निपट लें अपनी सास से। और अगर आपके दिल में दर्द है और आप सच्ची हैं, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देगा। जहाँ खटपट लगे कि आज किसी वजह से सास का मूड ख़राब है, या आज बहू का ख़राब है, या जो भी इंसानी रिश्ते हैं, या कहीं भी हैं, दोस्तों में हैं, क्लास में हैं, 2-4 मिनट एक्सक्यूज़ मी करके लें और बात शुरू करें, हटें ना जब तक वो बात ना पूरी हो जाए। और फिर वादा लें कि आज के बाद ना ये बात आप दोहराएंगी, ना मैं दोहराऊंगी, ना आपने सफाई पेश करनी है, ना मैंने लेनी है। ये जो हम सफाइयाँ भी बड़ी पेश करते हैं ना, और सफाइयाँ पेश करने में और गिबतें कर रहते हैं, तो बेहतर है कि बस ख़त्म, बात इधर ही ख़त्म, फिर कोई दोबारा दोहराए नहीं, बस बात ख़त्म हो गई। आप करके देखें ज़िंदगी। और मैं कहती हूँ हमारे पास वक्त किधर है इन जंगों को लड़ने का, अभी तो दुश्मनों से जंगें लड़नी है, अभी शैतान से लड़नी है, अभी नफ्स से लड़नी है, सुस्ती से लड़नी है, अपनी काहलियत जहालत से लड़नी है, हम अपने ज़ाती झगड़ों में पड़े रहेंगे सारी ज़िंदगी। ठीक है, और कोई बात जी आप? जी बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में, या तक कि वो आपसे करता था या आप उनके बारे में सोचती थी? हाँ, तो उनके लिए दुआ करें। ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक मौके पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी को देखा तो वो किसी फौत शुदा की बुराई कर रहे थे ना, तो कहने लगी कि लोगों मुर्दों को तो छोड़ दो, जिंदा लोग अभी बहुत है जिनकी तुम बुराई कर लो, तो जो चले गए आप उनके लिए दुआ करें। यही दुआ रब्बना अग़फिर लना, और ये जो कहा कि इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और ख़ुद भी कह दें कि अल्लाह ताला मैंने दिल की गहराई से उनको माफ़ किया। हमारा हाल यह कि जब कहीं जाना आना होता है कहते कहा सुना माफ़ करना, और हज और उम्रे पर जाते हुए जो फिर हम माफ़ियाँ मांगते हैं क्योंकि पता नहीं होता वापस आना कि नहीं आना, लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं। जब माफ़ी मंगवा ली है तो बाइंदा ना कहें। जी आप सिस्टर। कम्युनिकेशन, देखिए छोटी सी बात होती है, हमारा नव सोच सोच के और उसके अगेंस्ट बातें दिल में डाल के उसको बड़ा कर देता है। होगा कोई शख्स जो आपकी कामयाबी से जलता है, मान लीजिए उसका एक इलाज तो ये है कि आप उसके सामने अपनी बहुत ज़्यादा नेमतों का जिक्र ना करें। अगर आपके शौहर बीवी के ताल्लुक से होता है तो आप अपनी अच्छी बातें ना शेयर करें। आपके अच्छे कपड़ों को देखकर वो आपसे कुड़ते हैं तो आप उनके घर सबसे पुराना जोड़ा पहन के चली जाएं। अगर आपके अच्छे खानों से उनका दिल जलता है तो जब उनको दावत करें तो आप सादी दाल चावल बना लें, आप एक्सपोजर छोड़ दें। अगले को भी तो ना गुनाहगार करें। हम बाज़ दफ़ा, आप देखिए ये जब से हमारे माशरे में दो क्लासेस बनी है ना, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास, उससे भी कीने भड़ गए। घर के मुलाजिम जो है वो अपने मालकों से कीना रखते हैं, आपको पता है कि हमें तो वो छुट्टी करने पे 100 रुपये भी काट लेते हैं और बेगम साहिबा का एक जोड़ा 20,000 रुपये का आता है, अब हम भी मज़ा चखाएंगे। और मतलब मैंने ये बात सुनी है कि आज के दौर में गरीब सबसे ज़्यादा जालिम हो गया, क्यों? मेरे एक भाई हैं, मैं आपको सच बताऊं कि उनका होटल है, तो उन्होंने एक दफ़ा ये बात सुनाई तो मुझे उस वक्त से दिल में, मुलाजिम जो होते हैं ना किचन में काम करने वाले, तो उनके नाते से, यानी जो बात थी सारी बात का खुलासा क्या है कि मुलाजमों ने सुनाया अपना किसी का कि हमारा मालिक अगर हम पे सख्ती करता है ना, मिसाल है जी पैसे कम दिए या छुट्टी ना दी या बुला लिया या ओवर टाइम दिया कुछ भी किया, तो वो किचन में काम करने लगा, कहता है कि आपको साहब पता है कि हम उसका बदला कैसे लेते थे, हमें नहीं दे रहा ना, तो हम किचन में आके जब घी डालते थे ना कढ़ाई में, तो हम 2 गिलास घी के सिंक में फेंकते हैं कि इसका करो नुकसान। उसने खुद बताया कि जब मुलाजम खुश नहीं होते ना तो वो इस तरह मालिकों को लूटते हैं कि हमें नहीं देता इसको भी नुकसान हो, आधा फेंकते हैं आधा खाते हैं, तो ये रहेंगे। और याद रखिए, सच्चा दीन अल्लाह का खौफ, अल्लाह की बात, अल्लाह की नेमतों का एहसास, ये बंदे के दिल से ये कीने बुगस निकाल सकता है। और इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत किसके दिल में? इल्म वालों के। असल आलिम है ही वो जिसको अल्लाह का खौफ आता है। किताबें पढ़ने, डिग्रियां लेने, इससे कुछ नहीं होता। इल्म तो बोझ है, वबाल है, जब तक कि उस पर अमल ना किया जाए। जी कोई एक और कर ले, फिर मुझे लगता है हम दुआ कर लेते हैं, इसलिए कि शायद अभी नमाज के बाद भी आप लोग इधर ही हैं, लेकिन एक पुरसकून माहौल में हम अपनी इस नशीस को पूरा कर लें। जी
आपने बात की कि कीना जो है बिटवीन मुस्लिम्स के बारे में बात की ना, फ्रेंड्स के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, तो ये प्रॉब्लम आज के दौर में हम मतलब अब्रॉड रहते हैं तो बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स बहुत ज्यादा है।
मसलन कोई मिसाल दीजिए।
मतलब हम जो है मतलब फर्ज करें, जैसे आज ये होता है कि हम कहते हैं यार ये यहूद जो हैं या ये जो हैं ईसाई जो हैं या ये नॉन मुस्लिम्स जो हैं ये तरक्की कर रहे हैं, अल्लाह इनको दे रहा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, हम उनके बारे में दिल में कीना इस तरह रख लेते हैं। तो आई वुड से कि यू कैन एक्सप्लेन दिस एज वेल कि इसको कैसे डील किया।
जी देखिए कि जो ये बात इन्होंने कही कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच का कीना, सादी सी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कभी किसी को कीना था। रात जाते का बैर था, उम्मे जमील जिनका मैंने आपको नाम बताया, अबू लहब, उन रास्तों में कांटे बिछाते थे जहाँ से अल्लाह के नबी गुजरते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने आला अखलाक के साथ। नॉन मुस्लिम का कीना दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक तो दुआ करें और उनके साथ दावा करें और इस्लाम का खूबसूरत रूप दिखाएं। कल इस वक्त हमारा एक दर्स था, कल मैं फ्रांस में थी मगरिब की नमाज के साथ, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक सिस्टर थी, काफ़ी दिन से अल्लाह ताला उनका दिल खोल रहा, इंक्लाइंड थी, मतलब नाम सिर्फ इसलिए लेना चाहती हूँ कि वो क्या, वो ख़ुद को सिख कहलाती है ना, या अभी तक वो अपने आप को यही कहती थी। पिछले 2-4 महीने से किसी भी तरीके से अल्लाह ताला ने उनको किसी से मिलाया, आप ही जैसी कोई एक स्टूडेंट है उनसे, तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको भेजा, वो व्हाट्सएप पे उनको ऐड किया और उनको पहले रैंडम लेक्चर्स भेजे, फिर क्वेश्चन, वो ख़ुद अपने मज़हब की पढ़ी लिखी है, यानी वो अपनी मज़हब की प्रीस्ट थी ये कह लेना, तो उनको जब फिर दौरा कुरान शुरू कराया तो उसमें टू मैनी क्वेश्चंस थे उनके जहन में, क्योंकि आपने देखा दौरा कुरान में तो बस बात शुरू होती है तो आगे चल पड़ते हैं ना, डिटेल नहीं होती, तो वो फिर उसमें बहुत सवाल करती थी। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा इनको सवीलुल जन्ना ट्राई करो, देखो क्या होता है। जिस दिन से सवीलुल जन्ना उनको सुनाना शुरू किया, सवाल ख़त्म, यानी वही जो 1-2 क्वेश्चन जहन में होते हैं, कल माशाल्लाह वो कल का लेसन जो था कल उनको पहला पारा पूरा हो गया। तो वो उनको फ्रांस में पता चला, वो फ्रांस हैं, तो वो मेरे दर्स में परसों भी आई, कल भी आई, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, कभी आप उनकी बातें सुने। कल उसने मगरिब की नमाज हमारे साथ पढ़ी, बाद में कलमा उसको सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या उसने मेरे पीछे पढ़ा, और फिर उसको वो, यानी बस उसका दिल मुस्लिम हो चुका है, अब अल्लाह ने ज़ुबान पर लाना था वो भी आ गया, तो वो खुश है अब इस पर। मैंने कहा आपने ये बात, और पंजाबी बोलती, कल मैंने उसके लिए आधा दर्स पंजाबी में बात दिया, और मैंने नियत किया कि जहाँ मुझे मौका मिला मैंने एक पंजाबी में भी दर्स रिकॉर्ड करना है इस कुरान, क्योंकि उनको उर्दू इतनी समझ नहीं आती, लेकिन सुनती है फिर भी, लेकिन सही ठेठ पंजाबी बोलती है। तो कैसे आई, और उसने सुनाई जो बात, कहती कि जब वो दर्स ख़त्म हो ना तो ऐसी सबकी तरह, मैंने कहा भाजी तुम भी कुछ आके बोलो ना, तो मेरे साथ ये कुर्सी थी वो इधर बैठी थी, मैं कहा नहीं तुम ऊपर बैठो ना, तो माइक उसको दी, बड़ी खुश होकर बोलने लगी, कहती आपको पता है हमारे गुरुद्वारों में आजकल कितनी दुनिया है, सियासत है, उधर तो अपने बराबर किसी को बैठाते नहीं, वहाँ तो पैसा चलता है। वो बातें सारी जो आज मस्जिदों के फितने हैं ना, वो अपने गुरुद्वारे की बता रही थी बातें। कहती भाजी मैंने तो यकीन नहीं आता तुम मैंने अपने कोल बा लिया, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੋ ਯੇ ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ ਥਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਹਮਨੇ ਖਾਨਾ ਸਾਥ ਖਿਲਾਇਆ, ਬਿਠਾਇਆ, ਕੀਆ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਯੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਥੀ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬੇਚਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋ ਉਧਰ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ। ਬਸ ਹਮ ਯਹੀ ਰੁਕਤੇ ਹੈ, ਦੁਆ ਕੀਜੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦੇ, ਔਰ ਯੇ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਰੱਬਨਾ ਵਬਿਹਮਦਿਕਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹਿ ਵਅਤੂਬੁ ਇਲੈਕ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਕੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੇ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਗੈਸਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀਜੀਏ, ਵਟਸਐਪ ਪੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਛੋਟਾ ਸਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਕੋ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਥੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਨਕੋ ਬਤਾਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਯੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਪੇ ਵੀ ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਯੇ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੋਏ ਸੂਰਤ ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕੀ ਆਯਤ ਕਾ ਤਰ ਦੁਆ ਜੋ ਆਤੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਯੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਰੱਖਣੇ ਲੈ, ਯੇ ਕੁਛ ਸੀਡੀਜ਼ ਹੈ, ਯੇ ਪੈਨ ਹੈ ਆਪਕੇ ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੇ, ਤੋ ਯੇ ਆਪ ਸਭ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਕਰੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੋਂ ਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂ।
اكبر الله اكبر
الله اكبر الله اكبر
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي